पद संख्या 16। गाथा। कह यह दुज संकेत हो रज्जंद धीर ढिल्लेस, तिरसे उज्जल माघे व्याहन बरनी थान हर सिद्ध। प्रसंग। पृथ्वीराज के द्वारा संकेत स्थल पूछने पर हंसदूत ने निर्धारित स्थान बताते हुए कहा। व्याख्या। शशिव्रता और पृथ्वीराज के मिलन के लिए संकेतित अर्थात निर्धारित स्थान की चर्चा करते हुए हंसदूत कहने लगा, हे राजाओं में श्रेष्ठ धीर वीर दिल्लीश्वर पृथ्वीराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि वाले दिन शशिव्रता के ब्याहने और वरण करने हेतु हर सिद्धि नामक स्थान संकेतित या निर्धारित किया गया है। अर्थात माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी वाले दिन शशिव्रता हर सिद्धि पर पूजा करने के बहाने से आएंगी, वहां आप उससे मिलना। दोहा। यह कई हंस से उड़ी गयो लग्यो राज श्रुतान, छिन्न हंस धीरज धरत सुख जीवन दुख प्राण। प्रसंग। हंसदूत के चले जाने के बाद पृथ्वीराज देवास में शशिव्रता के पास पहुंचने के लिए व्याकुल हो उठे। इनकी तैयारी के ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए कविचंद बरदाई कह रहे हैं। व्याख्या। राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ राजकुमारी शशिव्रता के मिलन स्थल आदि का निर्णय करने के बाद वह हंसदूत उड़कर चला गया। पर अब तक महाराजा पृथ्वीराज के मन पर शशिव्रता के श्रुत्यानुराग का बाण लगकर अपना गहरा प्रभाव डाल चुका था। परिणाम स्वरूप राजा की आत्मा और मन अब एक क्षण के लिए भी धीरज धारण नहीं कर पा रहे थे। उसके अच्छे भले सुखी जीवन में अब प्राणों में प्रेम विरह का भाव बुरी तरह से भर गया था। राजा का आदेश पाकर 10,000 घुड़सवार सैनिक अपने घोड़ों पर देवास की ओर राजा के साथ प्रस्थान करने के लिए सवार होने लगे। दिल्लीश्वर पृथ्वीराज चौहान ने अपनी घुड़शाला के अधिकारी को बुलाकर आदेश दिया कि वह साथ जाने वाले शूरवीरों को वे घोड़े प्रदान करे कि जो विशेष अवसरों के लिए पूर्णतया सुरक्षित रखे गए थे। विशेष। पहले दूहे में हंस शब्द दो बार पक्षी और आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अतः यमक अलंकार स्पष्ट है। कवि ने बड़ा ही प्रभावी वर्णन किया है। दूसरे पद में बिलहान शब्द के प्रयोग से पता चलता है कि सामंत युग में घोड़े आदि विशेष अवसरों के लिए सुरक्षित रखे जाते थे, यह भी कि तब सुरक्षित सेनाएं भी होंगी। एक नारी की प्राप्ति के लिए 10,000 वीर सैनिकों का जीवन दांव पर लगाना सामंत युग में ही संभव था। छंद भुजंगी। चढ़े सब सामंत छल बलत वीर, मनोभाव छुट्ट किरण की तीर। चढ़ियो बाज राज पृथ्वी राज राजम, बग्रे पखरयो बाज सकित साजम। उड़े सूर्य जो हंस टूटे कमंधम, भर उपमा चंद जम पि कवित्तम। द्रम ज्यो मरोरे शिरम स्वामी हेतम, मयूरम कलाबाज निबंध नेतम। व्याख्या। एक अन्य वीर सरदार अल्हड़ सब प्रकार से सज्जित होकर कुछ इस अंदाज में विशेष घोड़े पर सवार हुआ कि मानो स्वयं दारमीर कर्ण धनुष बाण लेकर युद्धभूमि में अग्रसर हुआ हो। साथ ही लाखों में एक माना जाने वाला बघेला वीर बघेल राय अपनी 1,00,000 सेना को लेकर घोड़े पर सवार हुआ। उसकी सेना के पंख द्रौपदी के चीर के समान अनवरत आगे ही बढ़ती जा रही थी कि उसका पार पा सकना भी कठिन हो रहा था। उस वीर बघेला राय का ओजस्वी और वीर तन ही देखने वाले के मन में भय उत्पन्न करने के लिए काफी था। इस प्रकार सब प्रकार से कुशल छैल छबीले वीर सामंत और सरदार अपने सैनिकों के साथ विशेष निपुण अश्वों पर सवार होकर आगे बढ़े। उन्हें निहार कर लगता था कि मानव सूर्य की तीखी किरणों की तरह सभी तीर एक साथ छूट पड़े हों, अर्थात प्रत्येक वीर सूर्य की तीखी किरण के समान, बाण की नोक के समान तेजस्वी तीक्ष्ण और अपनी तेजस्विता में तीव्र जाज्वल्यमान था। उनके साथ एक विशेषतम घोड़े पर महाराज पृथ्वीराज चौहान स्वयं भी सवार हो गए। उस घोड़े को जो शक्ति का आगार था, युद्ध के अवसर पर काम आने वाले विशेष लौह कवच या झूल से सज्जित किया गया था, अर्थात पृथ्वीराज का घोड़ा भी कवच कुंडल से सुरक्षा की दृष्टि से विशेष सज्जित किया गया था। महाराज पृथ्वीराज की अत्युत्तम घोड़े की गति आदि की प्रशंसा करते हुए कवि आगे कहता है, वह घोड़ा अपनी गति की तीव्रता और तेजस्विता में सूर्य के समान था। अपने तीव्रगामी वेग में वह घोड़ा ऐसे लगता था मानो हंस का समूह एक साथ ही उड़ जाने के लिए टूट पड़ा हो। कविन्द्र चंद्र बरदाई यह सब निहार कर ही इतनी सुंदर उपमाओं द्वारा उस सब का प्रभावी वर्णन कर रहा है। जिस प्रकार एक हाथी मदमत्त होकर वृक्षों की डालियों को तोड़ मरोड़ डालता है, उसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज चौहान के वीर सामंत और सरदार भी अपने स्वामी के काम के लिए अपने सिरों को काट देने के लिए हमेशा उद्यत रहने वाले हैं। समस्त वीर गणों ने मिलकर अपने स्वामी महाराज की सुरक्षा की दृष्टि से कार्य सफलता के लिए ऐसे गहरे और सुदृढ़ व्यूह की रचना की जैसे कलाबाज मोर अपनी पूंछ की कलात्मक ढंग से चादर के समान तान कर घेरा सा बना देता है। विशेष पद्यों में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति और अनुप्रास के साथ साथ यमक अलंकार की छटा भी दर्शनीय है। वातावरण वीर रस के विधायक उत्साह स्थायी भाव से पूर्ण मंडित चित्रण किया गया है। वर्णन में दृश्यमयता और सजीवता के साथ साथ नाम सौंदर्य भी उल्लेख्य है। कवित्त एक लख दस अग्ग सेन सज्ज कम धज्ज वी असहस वारुण सत हजार फमज्ज अध लख पैदल अध साइक बहंत सज समूह चतुरंग दिशा दक्षिण पर जंत सुन श्रवण कुंवर शश वृत्त लिय सुन आवाज बर वीर घन चहुआन वृत्त लीने अग्रम प्राणहीन कड्ढन सुमन। प्रसंग दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज ने देवास के लिए प्रस्थान किया और उधर से कन्नौज से कमधज वीरचंद्र भी शशिव्रता को ब्याहने के वास्ते अपने विशाल सेना को लेकर चल पड़ा। इस प्रकार वीरचंद्र की सेना और शशिव्रता की प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए चंद्र बरदाई कहते हैं। व्याख्या कन्नौजेश्वर जयचंद्र के भाई कमधज वीरचंद्र ने 1,10,000 सेना सजाकर साथ ली और वह भी राजकुमारी शशिव्रता से ब्याह रचाने के लिए देवास की ओर चल दिया। उसकी विशाल सेना में 2,000 तो युद्धक हाथी थे और 7,000 रथ में अर्थात रथवाही सैनिक थे, 0,5 लाख अर्थात 50,000 पदाति सैनिक थे और 0,5 लाख धनुष बाणधारी वीर सैनिक थे। इस प्रकार अपनी चार प्रकार की सेना का समूह सजाकर कमधज वीरचंद दक्षिण दिशा में स्थित देवास की ओर चल दिया। उसके आगमन का समाचार राजकुमारी शशिव्रता के कानों में जब पड़ा तो चौहान नरेश पृथ्वीराज के साथ ही विवाह रचने का व्रत लेने वाली शशिव्रता ने अपने प्राण प्रसूनों को उपस्थित होने वाली अधर्ममय स्थिति में अलग निकाल देने की इच्छा की, अर्थात उसने आत्महत्या कर लेने की बात का मन ही मन निश्चय कर लिया। विशेष शशिव्रता क्योंकि मन ही मन पृथ्वीराज को समर्पित है, उसे पति मान चुकी है, अतः वीरचंद का आना और पिता द्वारा उसके साथ विवाह कर देना अधर्म कारक होगा। इसी कारण वह आत्महत्या का निश्चय कर लेती है, जबकि आत्महत्या भी एक प्रकार से अधर्म ही है, परंतु पर पुरुष को विवाह के नाम पर ही या अन्य किसी भी प्रकार से समर्पित होना वह उससे भी बड़ा अधर्म स्वीकारती है। अंतिम पद में रूपक अलंकार की योजना की गई है। दुह पास रिप नयर राग बिखय प्रतिराज मनो हत्थवर नयर राज समूह प्रतिसाज कूट कठिन में खलसु कूट दृग पलक उघारिया राज कित्ति सम्भरन गोख शमनन संभारिया किंकिन सुपाय धुंधर सुगज राज निशान सवत्त प्रति चहुआन राव आगम सुवृत कमल ही बढ़िय सुरति। प्रसंग एक तरफ से कमधज जयचंद ससैन्य, दूसरी तरफ से चौहान पृथ्वीराज के देवास नगर के समीप आ जाने पर कवि कल्पना कर रहा है कि दोनों का देवास नगर रूपी पुरुष ने मुक्त भाव से स्वागत अभिनंदन किया। आलंकारिक भाषा में इस कल्पित नगरीय स्वागत साक्षात्कार के प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि चंद्र बरदाई कहते हैं। व्याख्या जब एक तरफ से कमधज वीरचंद दूसरी ओर से पृथ्वीराज चौहान दोनों राजा देवास नगर के समीप आ गए, तब वह नगर दोनों राजाओं की साथ सज्जा को ध्यानपूर्वक निकट से निहार रहा है। लगता है मानो देवास नगर अपने दोनों दिशारूपी हाथों को सुसज्जित करके आगंतुक राजाओं का स्वागत सत्कार करके उनके साथ आलिंगन करने के लिए जैसे स्वयं ही चलकर उनकी ओर बढ़ रहा है। इसके बाद नगर की परिकल्पना एक सुंदर सजीली नारी के रूप में करते हुए कवि आगे फिर कहता है, नगर के आसपास बनी सुदृढ़ चरी दीवारी मानो उस नगर रूपी स्त्री की करधनी या तगड़ी है। नगर के राजभवनों पर बने उच्च कंगूरे ही मानो नगर रूपी सुंदरी के अनवरत देखते नयन पलक हैं। अपने उस नयन पलकों का अनवरत उघाड़े रखकर वह आगंतुक दोनों राजाओं को समक्ष निहार रही है। इस प्रकार राजभवनों के झरोखों जैसे नगर रूपी नायिका के खुले कान हैं, जिसे उसने आगंतुक दोनों राजाओं का यशोगान श्रवण करने के लिए एकदम खुला और सावधान कर रखा है। नगर में अवस्थित हाथियों के पैरों में बजने वाली घंटियां ही नगर नारी के पांव में पड़ी घुंघरियां या पायजेब हैं। देवास नरेश पान के सेवकों द्वारा बजाए जाने वाले निशान ये जैसे नगर रूपी नारी द्वारा कहे गए स्वागत शब्द हैं। इस प्रकार जब राजकुमार शशिव्रता ने सुना कि महाराज पृथ्वीराज चौहान नगर के पास तक पहुँच चुके हैं, तो उसका हृदय कमल खिल उठा, वह प्रेम भाव के बढ़ने से सरस हो उठा। विशेष आधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत पद्य को मानवीकरण का सुंदर उदाहरण कह सकते हैं। परंपरा की दृष्टि से सांग रूपक अलंकार की नव एवं भव्य योजना की गई है। परंपरागत होते हुए भी ताजगी विशेष द्रष्टव्य है। कमल द्वीप पद में अन्वय के अनुरूप उपमा और रूपक दोनों अलंकार हो सकते हैं। प्राचीन दुर्ग के रूपाकार परिपार्श्वों उत्तुंग कंगूरों आदि का भी यहाँ सजीव वर्णन होकर देवास के प्राचीन स्वरूप को व्यंजित करने वाला है। समूचे वर्णन में सजीवता है, उत्सुकता और एक प्रकार की अकथित जिज्ञासा भाव भी विशेष द्रष्टव्य है। चंद्रायना कर्ण पर्यंत कटाक्ष सुरंग विराजही कछुपुच्छन को जाहि पे पुच्छ तलाजही नैन सेन में बात जो श्रवणन सो कहें काम किधो पृथ्वीराज भेद करिनाल हैं। प्रसंग सुंदरी शशिव्रता के नेत्र पहले ही सुंदर हैं, पर अपने प्रिय महाराज पृथ्वीराज के आगमन का समाचार सुनकर उनमें और भी विकास निखार एवं सौंदर्य आ गया है। यह सब वर्णन करते हुए कविवर चंद्रवरदाई कह रहे हैं, व्याख्या राजकुमार शशिव्रता के सुंदर कटाक्षों से भरे पूरे नयन खींचकर कानों तक फैल गए हैं। कानों ने पृथ्वीराज के बारे में जो कुछ भी सुना है उसके नेत्र वह सब कानों से पूछना तो चाहते हैं, पर लज्जावश पूछ नहीं पाते। उसके नयन मात्र संकेतों में जो बात कानों को कहना और समझाना चाहते हैं, वह इस भय से स्पष्ट नहीं कर सकते कि कहीं पृथ्वीराज से संबंधित प्रेम भरी बातों के भेद का कामदेव को सुनकर पता न चल जाए। विशेष कवि ने एक अज्ञात यौवन्य मुग्धा नायिका के रूप में भी इस पद में राजकुमार शशिव्रता के नेत्रों एवं हाव भाव का वर्णन किया है। दूसरे कवि ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की वय संधि वाली नायिकाएं प्रत्यक्षतः एवं स्पष्टतः काम चर्चा करने से स्वभावतः घबराया भी करती हैं। कवि का वर्ण शशिव्रता के खिले नेत्र हैं, जिनका वर्णन उसने कान नेत्र के संघर्ष के ब्याज से किया है। अतः यहाँ पर ब्याजोक्ति अलंकार पूर्णतया स्पष्ट है, अनुप्रास अलंकार की योजना भी पूरे पद्य में पूर्ण स्पष्ट है। कवित्त पुच्छ मात पित पुच्छ पुच्छ परिवार गृह सब मैं वृत्त लियो निपत्थ गमरि पुच्छन बाल जब तीन थानक सब देव नीति आरम्भ व्रत लीनो तब प्रसाद उपनो मोहि इच्छा व्रत दीनो तिन काल व्रत लीनो सुमय गवरी प्रसाद सुपुज फल पारंज बात तुव मोह हुआ कहें औ कह लही फल। शशिव्रत प्रसंग राजकुमार शशिव्रता हंसदूत द्वारा पूर्व निर्धारित संकेत स्थल हरसिद्धि पर अपने प्रिय पृथ्वीराज से मिलने जाने को वचनबद्ध है, पर उपस्थित परिस्थिति की भयावहता को निहार उसकी वचनबद्धता से परिचित परिवारजन उसे वहां नहीं जाने देना चाहते। तब वह गौरी पूजन के व्रत और वहां जाने से व्रत के विफलता की बात कहकर अपने परिवारजनों से जाने की आज्ञा लेने की चेष्टा करती है। इस सब का वर्णन करते हुए कवि चंद कह रहा है, व्याख्या पूर्व निर्धारित संकेत स्थल हरसिद्धि पर जाने के लिए राजकुमारी शशिव्रता ने क्रमशः अपनी माता पिता तथा घर परिवार के अन्य सदस्यों से पूछा अर्थात आज्ञा मांगी। उनके हील इज्जत करने पर शशिव्रता ने उन्हें बताया कि जब वह सभी अभिनेरी बालिका ही थी तभी उसने गौरी पूजा का पक्का व्रत धारण किया था। फिर हरसिद्धि स्थान तो ऐसा महत्वपूर्ण है कि देवतागण विशुभ कार्य आरंभ करने से पूर्व व्रत लेते हैं। मेरे मन में भी वही व्रत धारण की इच्छा उत्पन्न हुई। बाल दशा में मैंने जो व्रत लिया था अब गौरी माता की कृपा से मुझे इच्छित वर के रूप में उसका फल प्राप्त होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में मोह ममता के वशीभूत होकर यदि मुझे वहां जाकर पूजन की आज्ञा नहीं देंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मुझे अबला नारी ने जो व्रत लिया उसका जो कुछ फल मिलने जा रहा है वह सब निष्फल होकर रह जाएगा। अतः आप सब लोग मुझे पूजन और गौरी दर्शन के लिए हरसिद्ध स्थान पर अवश्य जाने की आज्ञा प्रदान करें।